राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28/2 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण। अब बोलो परमा
मरने चाहे मोरे मनुष्य रहे मन स्थिति किसी रहे
नहीं वो तो कैसे रहे नियम नहीं है। सपना कैसे आएगा नियम है क्या? नियम सपना कैसा आता है ये नियम है कोई?
नहीं नियम तो नहीं,
ऐसे ही मरने समय में आता है। राम 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 वासना यस्य यत्र स्यात् सतं स्वप्नेषु पश्यसि स्वप्नवत् मरणे ज्ञेयं वासना तु अपूर्णा। वासना यस्य यत्र स्यात्, जिसकी वासना जहाँ है, सतं स्वप्नेषु पश्यसि, वो स्वप्न में उस वासना को देखता है, उस वासना के अंदर स्वप्न आता है। स्वप्नवत मरने की स्वप्न की तरह मरण में है, जैसी वासना होती वैसी पूर्ण होती है, उसके अनुसार गति होती है। मृत्यु समय भी जहाँ वासना होती उसी बात को कहा गीता ने, कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म सो। उस योनियों में गुणों का संग कारण है, सात्विक गुण का संग हो तो उर्ध्व गति जाएगा, राजसी मध्य गति जाएगा, तामस वृत्ति होगी तो अधोगति में जाएगा मृत्यु समय में। तो जैसी जैसी वासना है उसके अनुसार होगी, सबकी एक समान वृत्ति नहीं होती, नियम नहीं होता। ज्यादा काम करता है, ज्यादा आसक्ति रखता है तो वो ज्यादा आती है, ये है, परंतु परिवर्तन भी हो जाता है। इस वास्ते मृत्यु समय में बीमारी में ही उसको भगवान की याद दिलानी, भगवान का चिंतन कराना, भगवान नाम सुनाना, गीता सुनाना, ये बहुत अच्छी आवश्यकता है, सुनना चाहिए। अंतकाल में अगर वैसे हो गया, अंतकाल से मानते भी युग से यंग यंग वापिस स्वर्ण भाव कले तन समय रही थी कौन से सदा तद भाव भाव ही था। इस वास्ते हरे को भगवान में लगाना, मृत्यु समय में विशेष ध्यान देना, किसी की भी मृत्यु होती हो तो भगवान नाम सुनाओ, चेत हो तो गीता सुनाओ, सत्संग की बातें सुनाओ, और चेत नहीं हो तो भगवान नाम सुनाओ। भगवान नाम चेत में अचेत में दोनों में चलता है, और विवेचन की बातें गीता की बातें चेत सुनाओ, सत्संग की बातें सुनाओ, और चेत नहीं हो तो भगवान नाम सुनाओ। भगवान नाम चेत में अचेत में दोनों में चलता है, और विवेचन की बातें गीता की बातें चेत अवस्था में ठीक रहती है, बेहोशी में ठीक समझता नहीं। ये बात अंतकाल की बात है, इसमें कोई शंका हो बोलो। अभी तो बताया तो सावधानी की बात है, पहले से अभ्यास होगा तो करेगा, पहले से अभ्यास किया हुआ ही कर सकता है, अचानक मृत्यु समय में नहीं कर सकता। प्राणों को रोक करके स्थापन करके चिंतन करता हुआ से जावे तो अभ्यास दृढ़ होगा तो मृत्यु में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी आप वो करा तो अभी भी अपन करने के हाथ में बात नहीं है, मृत्यु समय में कर लोगे। अभी सावधान अवस्था में भी, सबल अवस्था में भी ठीक तरह से वो भ्रूण मध्य प्राण मावेश सम्यक सतम परम पुरुष अभी साधन अवस्था में सबल अवस्था में नहीं कर सकते तो मृत्यु समय कैसे कर लेंगे। मृत्यु समय वही कर सकते हैं जिन्होंने पहला ऐसा अभ्यास कर लिया है, उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, वही कर सकते हैं।
महाराज जी जबरदस्ती भी सुनाना चाहिए?
बिल्कुल,
वो सुनना नहीं चाहता,
वो सुनना नहीं चाहता, नहीं सुनना चाहिए,
वो भी सुनाना चाहिए
ना, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनाना चाहता उसको नहीं सुनाना चाहिए।
नहीं, वो जीव जो जाता है वो भी नहीं चाहता है,
तभी तो नहीं सुनाना चाहिए,
भगवान नाम नहीं सुनाना चाहिए
ना, वो सुनना नहीं चाहे उसको नहीं सुनाना, वो ना नहीं दे तो सुनाना। तो मैंने उनके स्वभाव समझ लो कि वो रुचि रखता है सुनाता, नहीं तो नहीं सुनाना।
पहले तो उम्र भर तो रुचि थी प्राणों की, वो
रुचि तो सुना,
अंत काल में वो विकल अवस्था में वो ना देवे,
नहीं ना दे तो नहीं सुनाना चाहिए, विकल अवस्था में है असल वो है, बात नहीं है, ना कहे उसको नहीं सुनाना, उसमें नाम का अपमान होता है, नाम नहीं दे तो सुनाओ, जहाँ तक बने अपने तो उसकी गति हो वैसे करना है, अपराधी थोड़े बनाना है उसको, मरते मरते को अपराधी नहीं बनाना है, समझे? नहीं सुनाने का तात्पर्य है जाते जाते वो क्यों अपराधी बनाओ, क्यों
नाम की तिरस्कार का भाव लेके मरेगा,
हाँ भाव लेके क्या फायदा, वो ठीक नहीं।
आपने एक दिन फरमाया था कि मथुरा और थू में विशेष सब्जी से किया था,
क्या करो फालतू बात, फालतू छोड़ दो, गति अच्छी होगी उसकी, अंत काल में छूट है, जिसको फांसी चढ़ाते हैं उनके लिए पहले कायदा था, आजकल मैं जानता नहीं हूँ, आजकल की लीला अलग है, पता नहीं हमें, नहीं तो उसको कहा जाता है तेरे कोई मन की बात हो तो कह दे भाई, तेरी फांसी होगी, कम को से मिलना है, हलवा खाना है हमारा तो हलवा खाए तो मजा है, तो उसी बात की मन की पूरी करने की सरकार की तरफ से आया थी आज्ञा, छूट थी वह,
आज भी
आज भी है, छूट है। ऐसे ही अंत काल में भगवान की किसी तरह से स्मृति हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए, ये छूट है।
तो उस पर आठवें अध्याय का तथस्व लागू नहीं होगा, आठवें अध्याय का तथस्व लागू नहीं होगा, उस पर
लागू क्यों नहीं होगा, छूट में लागू नहीं होगा, कैसे कहा आपने,
तो स्मरण है ना, वहाँ तो नाम उच्चारण चल रहा है और वहाँ आठवें अध्याय के तथस्व में स्मरण है, उसमें स्मरण का हेतु दिया गया है,
आप समझिए भाव,
यम यम वापी स्मरण भावम यजत्यन्ते कलेवरम, तो जिस अब ये श्लोक वहाँ कैसे लागू, क्योंकि उसका भीतर से स्मरण तो संसार का हो रहा है,
संसार का हो रहा है तो गीता सुनेगा तो उसका सुनने का अनुसार स्मरण नहीं होता है, अभी आपके कई मन वाले चलते हैं पर मेरी बात सुनोगे नहीं क्या,
बात तो सुनेंगे लेकिन चिंतन है ना,
तो चिंतन तो संसार का हो रहा है, मैंने आवाज भी आपका चिंतन हो रहा है, आप उठपटांग अगर सत्संग सुनता हो तो उसमें उठपटांग चिंतन होगा, तो सुनने बात होगी,
मुख्य बात तो सुनने वही होगी,
सुनने होगी, अभी अभी हालत में, अभी भी हालत में सुनने का असर होता है तो अंत काल में सुनने का असर होगा, उस संसार का स्मरण मिटेगा, इस वास्ते मृत्यु समय में भगवान नाम सुनाना, मृत्यु समय में गीता सुनाना, पर चेत हो रुचि हो तो गीता सुनाना, भगवान नाम तो हर आता तो सुनाना, चेत हो न हो सुनो में, पर गीता सुनानी चाहिए जिसमें सावधानी हो और वो सुने, रुचि हो तो उसको विशेषता लाभ होगा। आपकी शंका मेरी समझ में नहीं आई,
मेरी शंका ये है कि अंत काल में चिंतन तो संसार का चल रहा था उसका,
मैं कह दिया इसका उत्तर, अब और भी चिंतन संसार का चल रहा है, सब संसार चलते मिट गया, अब इतने बैठे हैं संसार चलते मिट गया, यह सबका
मिटा तो नहीं,
तो फिर सुनाने से क्या फायदा?
नहीं, मैं सुनाने की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि उसको सुनाया नहीं गया है नाम, वो स्वयं नाम ले रहा है।
हाँ,
चिंतन भी संसार का हो रहा है।
हाँ, तो वो नाम ले रहा है ना, उसका कल्याण होगा। छूट का मैंने इस वजह से छूट बताई, चिंतन हो जाए तो नाम मात्र लेने से। जब नारायण बेटे का नाम है, राज्य मेरे बेटे का नाम लिया, चार पांच सुध आ गए, सुना है कि नहीं?
तो इसका अर्थ ये हुआ कि चिंतन से नाम का अधिक महत्व है।
आप समझे नहीं अभी, मैं समझा नहीं आपको, आप मेरे समझे नहीं, हम दोनों बे समझी है, मेरी समझी है।
नहीं महाराज जी, वो आपने समझाया, वो स्पष्ट हो रहा है, वो समझ थोड़ी उनकी समझने में थोड़ी कमी रहेगी।
हाँ, तो कमी रहेगी तो क्या करूँ? तीन तीन बार गुजर के भी मेरी कमती है, दो तीन बार कहने पर भी नहीं समझी तो मैं समझा सका नहीं, तो कमजोरी मेरी हुई कौन की हुई? वक्तुरे भी तज्जाज्यम श्रोता यत्र बुझ्यते। देखो फिर कहता हूँ चौथी बार, अंत काल में छूट है, चाहे नाम ले ले, चाहे चिंतन कर ले, चाहे नाम सुन ले, चाहे गीता सुन ले, गीता ही तक कहते वो मन हो जाए तो कल्याण हो जाए उसका। अंतकाल में किसी तरह से भगवान का संबंध हो जाए तो कल्याण करना है। कारण क्या है कि भगवान ने मनुष्य शरीर उसके उद्धार के लिए दिया है, मनुष्य की महिमा है, भगवान की कृपा है, मनुष्य शरीर मिलता है उसमें, बड़े भाग्य मानुष दोनों पावा, भगवान की कृपा ने कृपा कर दी, नहीं कृपा भगवान मनुष्य कृपा कर देते हैं, तो कृपा कर देने का तात्पर्य है कि उसका उद्धार हो जाए। अब उम्र भर उसने नहीं किया, अंत में किसी तरह से भगवान का संबंध जुड़ जाए, नाम से जुड़ जाए, चिंतन से जुड़ जाए, सुनने से जुड़ जाए, किसी से जुड़ जाए तो कल्याण हो जाए, ये भगवान की कृपा का कायदा है। छूट है उस समय में, क्योंकि बेचारा मर रहा है। यही तो मैंने उदाहरण दिया कि मृत्यु समय में फांसी वाले को भी पूछा जाता है, तेरे मन में क्या है? तुम राज में वैसा पूछ रहे तो भगवान ने तो बहुत दया है ना, ज्यादा तो अंत समय में किसी तरह से भगवान से संबंध हो जाए, चाहे नाम से हो जाए, चिंतन से हो जाए, चाहे सुनने से हो जाए, किसी तरह से हो जाएगा तो वो मुख्य रहेगी बात, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला उद्धार के लिए है, तो उद्धार की बात होगी वो मुख्य रहेगी उस समय, अंत समय में।
अंत समय की आंशिक कृपा ही पूर्ण कृपा धारण कर लेगी रूप। अरे अंत समय की आंशिक कृपा ही
हाँ,
कृपा का रूप।
हाँ, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला भी मनुष्य शरीर प्राप्ति के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए, इस वास्ते छूट है। ये मैंने शब्द पहले कह दिया, छूट है। छूट का अर्थ क्या हुआ? दूसरा चिंतन भी हो जाए, दूसरी बात भी आ जाए, कर जाए, किसने भगवान हो जाए तो कल्याण करना उसका, छूट दी हुई है अंत समय में। अंत काले च क्या कहते हैं? च अर्थ अप्यर्थ में है। अंत काल में भी अगर मेरा स्मरण कर दो तो बिड़ा पार। अभी शंका हो बोल, शंका मानो अंतकाल में भगवान का नाम ले ले, भगवान का नाम सुन ले, भगवान का चिंतन हो जाए, गीता का चिंतन हो जाए, कि संत महात्मा का चिंतन हो जाए, किसी तरह से भगवत संबंधी उसका कोई सा भी संबंध भगवान का हो जाए तो भगवान की बात मुख्य हो जाएगी उसमें, क्योंकि छूट दी हुई है। अंतकाल है ना उसका, अब क्या करे वो, अब आगे समय है नहीं, इस बात से किसी तरह से हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए। हमने समझा इस बात के भी है क्या, भगवान जाना है, परमात्मा जाना है, पक्की बात, पर हमारे समझ में ये बात आई है, इसमें शंका और पूछ। इसमें शंका और पूछो हो गया। इस बात को लेकर मैंने छूट शब्द कहा था, छूट है अंतकाल में। आप बात कहने को तात्पर्य क्या हुए हो? कि कुछ भी हो जाए अपने भगवान का संबंध छूटे तो उसमें दूसरी बात के छूटे, भगवान की तरफ वृत्ति हो जाए, चिंतन हो जाए, श्रवण हो जाए, नाम आ जाए, किसी से नहीं छूट है दी हुई।
कहते हैं ये नियम पशु पक्षियों पर भी लागू होते
हैं। नाम सुनाते हो तो पशु पक्षी आप पर लागू होगा, आपका विचार उसका उद्धार करने का है तो वो आपका विचार उद्धार करेगा। पशु पक्षी समझता नहीं है ना, देखो जितना काम कर सकता है उतना ही उस पर अधिकार होता है, नहीं कर सकता वो अधिकार नहीं होता, उस चीज का कर ही नहीं सकता वो। आपका विचार है कल्याण करे इसका नाम सुनाओ तो नाम से कल्याण हो सकता है, क्योंकि उसकी वृत्ति हो जाएगी, आपकी कृपा होगी ना, जैसे भगवान की कृपा हुई, महात्माओं की कृपा होने से एक नई बात हो जाती है, ऐसे आपका विचार हो गया कि उसको नाम सुनाना जैसे कल्याण हो जाए तो आपकी कृपा वो काम करेगी, उसकी शुभ गति होगी। की बात
शुभ गति में और उदाहरण में तो फर्क है,
दोनों फर्क है। हाँ तो फर्क है, शुभ गति तो होगी, उद्धार हो जाए वो तो उसका मन उसमें तद्भिन्न हो जाए तो उद्धार हो जाएगा, नहीं तो आप सुना रहे हो जमरा भी उतना ही आएगा। वहाँ ये काशीखंड में भी आया है और विष्णु पुराण में भी आया है और भागवत में भी नारायण नाम है इसमें अजामिल उपाख्यान छठा स्कंद है, कौन सा छठा स्कंद के बारे में। तो इसका तात्पर्य ये है, प्रायश्चित है कई तरह के बताए, इसी पर शंका उठी है, उस पर भागवत में वर्णन आया ही है कि प्रायश्चित अनेक तरह के हैं, फिर उसमें बताया कि प्रायश्चित नाम ही प्रायश्चित है।
कर्मणा कर्म निर्हारो न यातंति के दृश्य थे, कर्म के द्वारा कर्म का परिहार नहीं कर पाऊ तो फिर वहाँ नाम नहीं
होगा, कर्म नहीं होगा, विशेष महिमा ही है, तो भगवान नाम की विशेष महिमा है। अब बेटे का नाम दिया उद्धार हो गया, ये बात ही है, युक्ति संग नहीं बैठती। जैसे चिंतन का आने चिंतन और चिंतन तो बेटे का होगा, परंतु संतों ने कृपा करके नारायण नाम रखना, ये संत कृपा काम करती है। वहां संतों का मतलब क्या था कि उद्धार करना, तो वो किस तरह से करेंगे, तुम बेटे का नाम नाम रख लेना।
महाराज जी भागवत में तो ये संतों की वाली बात भी नहीं थी, वहाँ तो ये भागवत में तो संतों की बात भी नहीं थी।
भगवत भगत माल में था, भगत माल में से भगत माल में से कथा थी, और भगवान का नाम किस तरह से आ गया, भगवान नाम हराम आ रहे जय समझा रहे छूटे तो बुलाया करण जान जी। तो अंत काल कष्ट सुकर सावक है ना, नहीं तो श्लोक है ऐसा, कष्ट सुकर सावक है नहीं तो मृत्यु जरा जर जरू हारा में पतन हो जाए, श्लोक है ऐसा। तो वो हराम क्या है ना, हराम कहते हैं शिव सूर को, जिसको वो काम नहीं लेते उस चीज को हराम कहते हैं, ये हराम हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। गाय जैसे मनुष्य के लिए गोमांस निषेध है, ऐसे सूर का मांस निषेध है, परंतु दोनों में भाव में फर्क है, गौ में तो पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, इस वास्ते उसका रोए भी नहीं टूटे, ऐसी बात है भाव की। और वे सूर को समझते हैं मलिन, इस वास्ते हराम है वो काम का चीज नहीं है, खराब है, निकृष्ट है, या उत्तम है, ये फर्क है भावना है। और गऊ की जैसे बुद्धि गऊ बुद्धि है हिंदुओं की, ऐसे सूर में पूज्य बुद्धि नहीं है मुसलमानों की, ये बुद्धि है वो उसका ठीक नहीं है, उसका मानस उसका काम में नहीं लेते, खराब है, नीच है, अशुद्ध है,
हराम बोला,
हराम बोलते उसका,
हराम बोलते प्राण निकल गए,
हराम बोलते प्राण निकल गए, तो राम आ गए ना हराम में। इस बात से उदाहरण दिया कि अब बोलो हराम कहा सूअर को और हराम में राम आ गया तो उसका कल्याण हो गया, ऐसा शास्त्र माता है। तो क्यों आता वो मैंने कही वो बात आती छूट है अंतम किसी तरह से भगवान संबंध कश्चित छूकर साव के ने तो मिले सो जरा जर जरो हारा मेती ऐसा पूरा श्लोक याद नहीं है भाई ऐसा ही बात। भगवान का ये छूट है ना उसमें अलग हिसाब है कोई पास नहीं है। तुलसी सीता ना सके एक बड़ा अंधे तुलसी सीता ना सके तुलसी दुआ याद नहीं आ रहा है। खीजे दीनो परम पद और रीजे दीनी लंग अंधाधुंध सरकार है तुलसी बोली संग बोलो रावण पर गुस्सा किया तो उसको परम पद दे दिया और विभीषण राज्य राज जलंका का अब बड़ा कौन सा अंधाधुंध सरकार है बोलो खीजे दिनों परम पद रीजे दिन लंक अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक भजो जो अंधाधुंध कल बेटा पार हो जाएगा अपना उसके घनों हिसाब को करें अंत सब ठीक है और काम बन गया अंधाधुंध सरकार है अंधाधुंध काम करो और बोलो
यो भ्रष्ट की गति में योगी जब चलित मना हो गया योग से तो मतलब वो समता से चलित हो गया तो फिर उसका तो पतन हो गया।
पतन नहीं होता है वो तो साफ पहले ही कह दिया नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गति गति दुर्गति को नहीं जाता।
लेकिन महाराज जी उस पर तो वो नेहा विक्रम नाश्वती वो श्लोक लागू नहीं होता है
लागू हो गया ना वो दो गति बताई है उसमें एक गति बताई है पुण्यकृत लोकों में जाकर पीछे आकर शुद्ध श्रीमान गर्म जन्म लेता है अथवा योगियों को जन्म लेता है तो भोगों की आसक्ति से उसका विचलित हुआ तो स्वर्ग जाएगा जो यज्ञ यज्ञ करने वालों की गति को जाएगा वो मामूली नहीं है।
लेकिन उसमें जो त्रैतो महतो भयात था वो लागू कहाँ हुआ तो लागू नहीं हुआ त्रैतो महतो भयात था ना उसमें
हाँ
तो वो तो लागू नहीं हुआ
लागू हो गया ना वो जो ऊपर जा करके फिर श्रीमान गर्म जन्म लेता है और अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तब योग भ्रष्ट हुआ। तो योग भ्रष्ट हुआ है साधक दो तरह का होता है ध्यान देकर सुनो बात बड़ी मार्मिक है इनका प्रश्न इतना मूल्यवान नहीं है पर प्रसंग अच्छा है मूल्यवान नहीं है हो मानो योग भ्रष्ट होता है तो योग भ्रष्ट होने पर वो योग में स्थित नहीं रहा तो योग भ्रष्ट हुआ तो पतन होना चाहिए नरकों में जाना चाहिए 84 लाख जोड़ी में जाना चाहिए ना योग से गिर गया ये तो ये है प्रश्न का आशय ये है ना ये आशय है ना प्रश्न का
मेरा कहने का
अर्थ
ये था
त्रैतो
महतो भयात जो है
हाँ।
उसका अर्थ ये बताया गया था कि उसका उद्धार हो जाएगा
हाँ।
पुनर्जन्म नहीं होगा उसका
हाँ।
इसका तो पुनर्जन्म हो गया
त्राय तो महत्व तो किसके लिए कहा है
समता के लिए
समता के लिए कहा है तो योग में होने समता हो जाएगी तो समता से योग से भ्रष्ट हो गया ये लाभ कैसे होगा तभी तो कहता हूँ प्रश्न युक्ति संगत नहीं है त्राय से महत्व भयाद तो योग होने से है अब योग भ्रष्ट में लागू कैसा होगा वो
तो योग से भ्रष्ट हुआ तो
हाँ तो योग से भ्रष्ट हो गया तो योग भी बात लागू कैसा होगी
लेकिन आंशिक क्षमता तो उसमें थी ना असल
क्षमता उसमें कैसे रही क्षमता है तो योग भ्रष्ट कैसे हुआ
ये तो समझ नहीं आ रहा
है। तो ये तो बात मेरी समझ नहीं है आपका प्रश्न
यहाँ तुम्हारे प्रतिभा विद्युत ये नहीं लागू होगा क्या महाराज
देखो भाई मेरे
मुख्य बात बता रहे थे
मेरे को बात कहने दो मुख्य बात कह रहा था मुख्य बात
साधक दो प्रकार के
साधक दो प्रकार के होते हैं एक तो स्वयं वैराग्य हो गया और परमात्मा में लग गया, ऐसा साधक होता है। एक है स्वयं वैराग्य तो नहीं हुआ, संग अच्छा मिल गया, साधन में लग गया। तो साधन में दोनों लग गए, योग भ्रष्ट तो वो होता है साधन करते हुए साधन से विचलित हो गया, उसको कहते हैं योग भ्रष्ट, योग से भ्रष्ट हुआ। तो साधक दो तरह का होता है, तो दोनों में योग भ्रष्ट होने में दोनों योग भ्रष्ट होंगे तो दोनों की गति एक नहीं होगी, अलग अलग होगी। जिसको वैराग्य हुआ है, त्याग हुआ है, बिल्कुल पहले अंत समय में नहीं रहा है, तो जन्म होगा वो योगियों कुल में जन्म होगा। और एक वैराग्य तो नहीं हुआ है पर सत्संग से करके साधन में लग गया है, और उस साधक याद नहीं रहेगा तो स्वर्ग में जाएगा। जो यज्ञ करने वाले, दान पुण्य करने वाले, विशेष यज्ञ करने वाले जो जाएंगे उस गति को जाएगा वो। कितनी बड़ी कितनी बात है, ध्यान आई नहीं, पता नहीं।
साधन से भ्रष्ट हो जाता है तब उसको वो स्थान मिलता है जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि करने
मिलते हैं। पश्चांतरायो मैत्रेय देवेंद्र द्वादिगम फलम, तस्य अंतराय विघ्न है, स्वर्ग प्राप्ति करना विघ्न है। तो विघ्न भी स्वर्ग की प्राप्ति है। एक मिडिल में एक नंबर पास हुआ इनाम मिला, और एक एमए में फेल हो गया, योग्यता किसकी ठीक है? एक नंबर पास हुआ और हो गया फेल, बताओ।
एमएम जो फेल हुआ है वही योग्यता वाला जाता
है, योग्यता वाला है। तो योग भ्रष्ट हुआ है तो योग में आरूढ़ होने से योग भ्रष्ट हुआ है, आरूढ़ होने में कैसे योग भ्रष्ट होगा? गिर गया घोड़े से, गिर गया तो घोड़े पर चढ़ा है तब गिरा है घोड़े से। योग भ्रष्ट हुआ है, योग से पतन हुआ है तो योग पर आरूढ़ हुआ है तब योग भ्रष्ट होता है, आरूढ़ नहीं हो तो भ्रष्ट कैसे होगा? आरुणुक्षु है तो भी उसकी गति कल्याण कृष्ण दुर्दी। वहाँ वो आपने कहा ना स्वल्पम तो महत्व गया, तो वो लागू नहीं होगा, ये लागू होगा वहाँ जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्माति वर्ता थे, ये लागू होगा। त्राय तो महत्व भयात योग भ्रष्ट में कैसे लागू होगा? वो तो योग में होगा। नहीं समझे? मानो त्रायते महतो भा तो योग की महिमा कही है, योग भ्रष्ट की नहीं कही है, योग में से तो ना उसकी बात को सही
है। महाराज जी बच्चे जची बात है, स्वल्प से साथ में दे दिया ना।
हाँ।
जो स्वल्पता दी है वो तो कहेंगे भ्रष्टता को लेकर की स्वल्प
ना है। ना भ्रष्ट को नहीं है, उसका अनुष्ठान की कमी है।
नहीं था ना
भ्रष्ट नहीं है, अनुष्ठान की कमी है, वो स्वल्प है। अंतकाल में चिंतन नहीं होता, स्वल्प कहाँ हुआ है? स्वल्प ही नहीं है वो, विषय दूजा, वो विषय दूजा।
तो पहले आ गई थी महाराज जी, स्वल्प तो उसमें पहले से आई हुई है।
हाँ तो आई हुई है तो उसका मातम मैंने कह दिया महाराज, मैं तो ये कह दिया कि योग भ्रष्ट होता है वो कितना विचित्र होता है कि जिसने यज्ञ नहीं किया यज्ञ के फल को प्राप्त हो गया।
लेकिन वो कल्याण तो नहीं हुआ महाराज जी।
तो कल्याण तो कैसे हो, योग भ्रष्ट हो गया तो कल्याण कैसे होगा?
ये तो गड़बड़ हो रहा
है, वो चीज उसकी महिमा बताने में अलग थी। ये चीज
ये तो प्रतिवादी विधि से लागू हो गया उसमें, तो
ये लागू नहीं है। ये आप अभी तक नहीं समझे, प्रसंग अंत काल का है, साधक का नहीं है। प्रसंग किस विषय का है, कौन सा श्लोक किस विषय का, उस विषय में संज्ञा करो। वो तो जब ऐसा थे बीता सांख्य बुद्धि योगे तुम्हारा सुनो, अब योग के विषय में सुनो, तो योग के विषय में सुनो तो योग की महिमा का विषय, योग भ्रष्ट का विषय है ही नहीं वहाँ।
नहीं तो योग भ्रष्ट तो अंत काल में ना होता है।
ये प्रसंग दूसरा,
वो प्रसंग नहीं है महाराज। इस बात मैंने पहले कह दिया, मेरे कह रहे थे तो मैं कह देता बात, मैंने कह दिया प्रश्न इतना बढ़िया नहीं है, मैं बात बढ़िया बताता हूँ। मैं प्रश्न इतना बढ़िया नहीं है, प्रश्न है साधक का और प्रश्न चल रहा है मरने का, मरने के समय का है, वो मरने के समय के नहीं है वो प्रसंग। ऐसा ते भी था सांख्य में तो कह दिए वो योग के विषय में सुनो, मरने वाला सुनेगा यूं भाई, ये तो सांख्य में कह रहे अब योग में सुनो, ये मरने वाला सुनेगा। आप कहता है समझ में ठीक है
समाधान
हो गया, संख्या ही नहीं समाधान हो गया, उठपटांग है, विषय नहीं है वो, आप फरमाओ वो आप समझे नहीं, आप ठीक कही आपने। इनके शंका है योग के अंश को लेकर उसमें समता है, तो वो समता कल्याण तो नहीं किया उसका, ये है प्रश्न इसका। तो मैं समझता हूँ प्रश्न है, पर ये बिल्कुल प्रसंग की बात नहीं है, अंतकाल की बात चल रही है, इस प्रसंग का नहीं है ये, प्रसंग साधन के विषय का है, अंतकाल के विषय है ही नहीं, कैसे उसको लगा दे मां, उसकी समता हुई थोड़ी तो, समता हुई तो वो जिज्ञासु रूपी, मैं कहता हूँ उससे नीची बात बताई मैंने, वो तो योग के विषय स्वल्प धर्म से, हम तो कहते हैं जिज्ञासु रूपी योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते, उसे नीची बात बताई, योग के विषय में सुनो, उस कहता हूँ योग की महिमा है, और यहाँ योग है ही नहीं, योग का जिज्ञासु है, तो वो स्वल्प में वो तो साधन के विषय की बात, उससे नीचा है जिज्ञासु, स्वल्प धर्म से तो किस उत्तर हुआ है ना,
या तो
जिज्ञासा मात्र है, तो जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है तो उसका थल पर उस कल्याण करेगा, वो विषय अंत काल का है ही नहीं, 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 किसी बात कहूँ वो विषय दूसरा है, ये विषय दूसरा है, अंतकाल की बात है ना, वो अंतकाल का विषय नहीं है, वो तो एक प्रसंग में है, सावधानी से कहने वाला, सावधानी सुनने वाला है, उसमें दो विभाग की है, सांख्य में कही, योग के विषय में सुनो, उस विषय का वो अंतकाल कैसा हुआ, अब अंतकाल में कहो तो कैसे हो जाए योग, प्रश्न नहीं होता वो, अब समझाई नहीं समझ अभी आया नहीं, ये बखमा आई नहीं बात, फिर सुनना कभी, फिर पूछना, अब आज छोड़ दो, ज्यादा नहीं हो जाते ना फिर बात समझ में नहीं आती, कौन समझ में पूछो, समय बहुत ज्यादा हो गया। दो तरह के साधक होते हैं, जो वैराग्य हो जाता है, वैराग्य होकर के किसी कारण से अंतकाल में स्मृति छूट जाए तो योगी नाम एव कुले भवती, सीधा योगियों के कुल में ही जन्म होता है, तो जन्म से ही उसे साधन की सामग्री मिलती है, उसे कल्याण होता है सुगमता से, और ऐसे ही साधन में लगा साधन करता है, इसमें भोगों की इच्छा छूटी नहीं है, तो भोगों की, संसार के भोगों की इच्छा छूटी नहीं है, उसको दिव्य स्वर्ग का भोग मिलेगा,
जी।
तो कितनी विलक्षण बात है, महत्ता की तो ध्यान नहीं दिया, तो बात सुना, अब याद रखो फिर पूछो, ठीक है, समझ ज्यादा हो गया, फिर प्रश्न क्यों करे, वो प्रश्न ठीक नहीं है, मैं कह दिया प्रश्न ठीक नहीं है, इसे आदमी में कह दिया फजीती होती है उसमें, जो कोई मैंने परवाह नहीं कर कह दिया, तो फिर तो मेरे को बोल देना चाहिए, बोलन दे, छुट्टी दो थोड़ी सी बोलने के लिए, अवकाश दो,